This is an ABP Life podcast.
22 अप्रैल वो दिन जब दुनिया मनाती है अर्थ डे, वो दिन जब हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि जहां हम रहते हैं उसे हमें सुरक्षित रखना है, उसे कंजर्व करना है, उसे प्रिजर्व करना है, उसका संरक्षण करना है। मगर कब से शुरुआत हुई इस अर्थ डे की, आइए जानते हैं आज इस एपिसोड में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान, आपकी फेवरेट एफआईआई होस्ट, और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर एफआईआई, यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो आज की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक चुना है, अर्थ डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि कब से अर्थ डे मनाया जाने लगा। सच पूछिए तो अर्थ डे का इतिहास काले अक्षरों में लिखा है। एक ऐसी त्रासदी, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें बीच के बीच काले हो गए थे, पक्षी उड़ नहीं पा रहे थे, समंदर के जीव दम तोड़ रहे थे, घुट घुट कर मर रहे थे। कहते हैं ठोकर लगने के बाद ही इंसान को समझ आता है, मगर इस ठोकर ने तो इकोसिस्टम के इकोसिस्टम ही उजाड़ दिए। और फिर शायद तब हमें समझ आया कि ना भाई ना, पृथ्वी पर रहना है तो पृथ्वी को खुद से ही बचाना पड़ेगा। सबसे पहली बार अर्थ डे मनाया गया था 1970 में अमेरिका में। 1969 में सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल हुआ था, जब इंसानी गलती की वजह से समंदर में गैलन के गैलन तेल फैल जाता है और इस कारण समंदर के जीव सांस नहीं ले पाते, इकोसिस्टम नष्ट हो जाते हैं, चीजें मरने लगती हैं, उसे कहते हैं ऑयल स्पिल। तो 1969 में सेंटा बारबरा में हुए ऑयल स्पिल के खिलाफ अमेरिका में करीब 2 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए थे। बस तभी से अर्थ डे मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि 200 देशों द्वारा साइन किया गया पेरिस अग्रीमेंट भी इसी दिन साइन किया गया था। अब आप पूछोगे कि पेरिस अग्रीमेंट क्या है? तो जी, पेरिस अग्रीमेंट में 200 देश साथ आए थे और उन्होंने अपने अपने देशों में ग्रीन हाउस एमिशंस में कमी लाने का प्रण लिया था। मगर सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल हुआ कैसे था, मतलब इतनी बड़ी कैसी घटना थी कि पूरी दुनिया उसके बाद से अर्थ डे मनाने लग गई? ये बात है 28 जनवरी 1969 की, जब लोग अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया के बीचेस, वहां की शोर्स बहुत फेमस हैं। गूगल कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितने खूबसूरत बीचेस हैं वहां पर। तो एकदम पिक्चर परफेक्ट शोर लाइन थी, चिड़िया उड़ रही थी, लोग अपना अपना काम कर रहे थे कि शोर लाइन से कुछ 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर समंदर में एक गिलगिला सा काला सा तारनुमा चीज फैलने लग गई। आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया के समंदर में ऑयल रिग्स हैं, यानी कि तेल के कुएं हैं जहां से तेल निकाला जाता रहा है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि कैसे उस पानी में से तेल निकालेंगे जहां इतनी बड़ी आबादी रहती है, मतलब एक्सीडेंट्स हो जाने का खतरा भी तो बना रहेगा। फिर भी उस पानी में ऑयल ड्रिलिंग होती रही। वैसे तो जब कुएं से तेल निकालना होता है तो अमेरिका में प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, हर देश के होते हैं, कि महासागर यानी कि ओशन के तल यानी कि बेड, सी बेड के 300 फीट नीचे तक एक प्रोटेक्टिव स्टील कास्टिंग होगी। अब आप समझ रहे हैं, जैसे जब आपका हाथ पांव टूट जाता है तो उसके ऊपर एक कास्ट लगता है, समझ रहे हैं? तो वैसे ही कास्ट था, लेकिन ये प्रोटेक्टिव स्टील का कास्ट बनाते हैं जो ऐसे एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स होते हैं तो उनसे वो बचाता है, प्रेशर कंट्रोल कर लेता है, चीजों को बाहर नहीं आने देता। मगर यूनियन ऑयल नाम की कंपनी के ना जाने क्या साठ गांठ थी सरकार से कि अपने नए कुएं, उन्होंने एक नया कुआं खोला था, उसे कहते थे प्लेटफॉर्म ए, तो अपने नए कुएं के लिए 300 की बजाय सिर्फ 239 फीट की स्टील कास्टिंग करवाई उन्होंने। सोचा शॉर्टकट है, इतना ही करा लेते हैं, क्या हो गया। और सरकार ने भी हामी भर दी। बस यही गड़बड़ हो गई। ये बड़ी कंपनियां सरकारों की साठ गांठ के साथ ही ऐसा कर सकती हैं। भोपाल गैस कांड में भी यही हुआ था, इसमें भी यही हुआ। इन लापरवाहियों के चलते आम आदमी को खामियाजा भुगतना पड़ता है और कहीं पर्यावरण को। ये शॉर्टकट उन्हें बहुत महंगा साबित हुआ। ड्रिलिंग के 14वें दिन ही प्रेशर इतना बढ़ गया कि कुएं की नींव पर एक ब्लोआउट हुआ और जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ए का जो एक चबूतरा है, उसके ऊपर 90 फीट तक मिट्टी आ गई। प्लेटफॉर्म धंसने लगा था। कंपनी ने कोशिश की कि कुएं से तेल बाहर ना आए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी के वर्कर्स ने समंदर के ऊपर बबल बनते देखे और वो समझ गए कि क्या हुआ। प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि नेचुरल गैस और तेल दोनों ही बस कोई भी जरिए से बाहर आना चाह रहे थे। और हुआ भी यही, समंदर के तले में क्रैक्स आने लगे और उसमें से नेचुरल गैस और तेल निकलने लगा। शुरू के 11 दिन तक 9000 गैलन पर आर की स्पीड से तेल बाहर समंदर में फैलता रहा। सोचिए, एक घंटे में 9000 गैलन तेल बाहर आ रहा है जो समंदर में फैल रहा है। जब तक यूनियन ऑयल कंपनी ने तेल को फैलने से रोका, तब तक 30 लाख गैलन तेल समंदर में ऑलरेडी फैल चुका था और करीब 60 किलोमीटर तक समंदर में जा बसा था। सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल अमेरिका देश का सबसे भयानक स्पिल है। 53 साल बाद और कई और भयानक ऑयल स्पिल्स के बावजूद, ये स्पिल दुनिया का तीसरा सबसे भयावह स्पिल था। स्पिल के एक हफ्ते के अंदर अंदर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एनजीओ सब साथ आए, सड़कों पर उतरे और गेट ऑयल आउट नाम का एक अभियान भी शुरू किया। अभियान का मकसद था सरकार को सेंटा बारबरा में तेल निकालने से रोकना। कई जतन किए गए। यूनियन ऑयल ने कभी तेल पर पाउडर छिड़का, टेलकम पाउडर छिड़का, कभी डिस्पर्सन छिड़का, कभी समंदर के तले पर लोगों को क्रैक भरने के लिए भेजा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहर के बीच पर आए दिन पक्षी और जानवर मरे हुए पाए जाने लगे। पक्षियों के पंखों में टार और ऑयल का एक अजीब सा मिक्सचर जमा रहता था, जिसके कारण वो ना सांस ले पाते थे, ना शिकार के लिए उड़ पाते थे, ना चल पाते थे और घुट घुट कर मर जाते थे। सरकार के हिसाब से 3700 और वैज्ञानिकों के हिसाब से 9000 पक्षी इस ऑयल स्पिल का शिकार हुए और मारे गए। धीरे धीरे ये तेल कांड दुनिया में वो चिंगारी बनकर फैली जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि लोग पहली बार पर्यावरण के बारे में सोच रहे थे। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जब से इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई थी, इंडस्ट्रीज में सामान बनने शुरू हुए थे, तभी से पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा था, लोगों को ये दिख भी रहा था। बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के पहले से एक चिंता बनी हुई थी लोगों में, लेकिन इस चिंता को हकीकत का रूप लेते देख रहे थे पहली बार। अब उनके सामने इंसानी गलतियों के नतीजे आ रहे थे। अब चीज़ें ज़्यादा असली लग रही थी। अब हम चीज़ों को छू सकते थे, हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस को छू सकते थे कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ बनाओ और उसमें भूल चूक माफ़ हो जाएगी। नहीं, अब इसका असर सब पर पड़ेगा, क्योंकि अब पर्यावरण पर इसका असर पड़ेगा। नाउ द एनवायरमेंट एट स्टेक। अर्थ डे का दिन 22 अप्रैल इस पूरे ऑयल स्पिल में जवान लोगों की भूमिका को मद्देनजर रखते हुए चुना गया। अमेरिका में ज्यादातर इस समय सभी जो कॉलेज या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी छुट्टी होती है, तो वो अभियान चला सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं एनवायरमेंटल कॉजेस के लिए। और ऐसे ही देखते देखते ये इतना बड़ा अभियान बन गया कि अमेरिका में कई नए लॉस तक पर्यावरण पर आ गए, जैसे कि क्लीन वाटर एक्ट। भले ही गेट ऑयल आउट वाला अभियान ज्यादा दिन सरकार को तोड़ कर नहीं रख सका, मगर इसके चलते द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में पहली बार इन्वायरमेंटल स्टडीज पर एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसके चलते दुनिया की बाकी जगहों ने भी सीख ली और फिर सबको एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट दिया गया। ये तो थी अर्थ डे की हिस्ट्री, मतलब कितनी ठोकरें खा खा कर हम समझते हैं। कई बार लगता है कि कहीं हम ही तो दुनिया के कैंसर नहीं, क्योंकि कई बार ये ठोकरें बहुत महंगी पड़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी ठोकर खानी ही ना पड़े कि बैसाखी लेकर चलना पड़ जाए आगे। आज है अर्थ डे, प्लीज टेक केयर ऑफ द प्लैनेट, प्लीज ट्राई टू डू योर ओन बिट। मैं हूँ साहिबा खान और आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FII। नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस। डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।